देते हैं नेक बादल। क्योंकि भक्तों, ये जो भक्ति रस का सिद्धांत है ना, वो भक्त के हृदय में ही ग्रहण हो सकता है। इसलिए रामानंद राय को केवल बादल नहीं कहा, क्या कहा? संचार्य रामा वित भक्त में ये भक्ति बादल कहा। भक्त मेघ कहा ना, खाली मेघ नहीं। क्योंकि ये जो भक्ति रस सिद्धांत जो है, वो भक्त के हृदय में ही ग्रहण हो सकता है। चैतन्य चरितामृत में आया है, महाप्रभु पुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य से संवाद करते हुए कहते हैं, देखी या ना देखे जिन अभक्त गौण, सूर्य न देखे उल्लू के, जैसे उल्लू होता है उल्लू, उल्लू के न देखे जिन सूर्य किरण, जैसे उल्लू और सूर्य को नहीं देख पाता, ऐसे ही जो अभक्त है वो इस भक्ति रस सिद्धांत को नहीं ग्रहण करता। इसलिए रामानंद राय को भक्त मेघ की उपमा दी। और भक्त मेघ में ये भक्ति प्रेम रस सिद्धांत रूपी जल कहां से आया है? उसी भगवान से, चैतन्य समुद्र से ही। क्योंकि बादल समुद्र से ही बनता है, समुद्र के जल का बाष्पीभवन होकर ही बादल बनता है। और फिर कविराज जी कहते हैं कि वही बादल जब मीठा करके वो रस बरसाता है, तब समुद्र के छिपी या शंख में जाने से वो मोती मोती बन जाता है। वो जल क्या बन जाता है? मीठा। और बाद में क्या बन जाता है? मोती बन जाता है। गौरा भिने के अमुना विपुरने सज क्या प्रयाति। और उस भक्ति मेघ रामानंद के मुख से जो भक्ति रस सिद्धांत रत्नों को जब पाया, तो चैतन्य महाप्रभु रत्नों के महासागर बन गए। ऐसे एक श्लोक में एक भक्त ने बड़ा सुंदर बात कहा है, रत्नाकर, रत्नाकर समुद्र को कहते हैं ना, जिसमें बहुत सारे रत्न होते हैं। रत्नाकर तव गृह गृहिणी च पद्मा, किं देयमस्ति भजते पुरुषोत्तमाय। पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी को क्या कहते हैं? पुरुषों में गीता के 15वें अध्याय का नाम क्या है? माम जानाति पुरुषोत्तम। भगवान गीता में अपने आप को पुरुषोत्तम कहते भी है। जगन्नाथ जी को इसलिए जगन्नाथपुरी धाम को भी पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं। तो हे जगन्नाथ, हे पुरुषोत्तम, किम देयम अस्ति, हम आपको क्या दे? बोले क्यों क्या दे, बहाना बना रहे हो क्या? मीरा वाले की तरह ब्रह्म उत्सव आ रहा है, क्या दे, आपके पास तो सब कुछ है। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, रत्नाकर तव गृह, क्योंकि आप तो समुद्र में रहते, समुद्र में तो सारे रत्न पड़े हैं, आपका घर क्या है? जगन्नाथ के रूप में नीलाचल समुद्र के तट पर रहते हो, लेकिन विष्णु रूप में चाहे कारणक या गर्भ रहते कहां हो? समुद्र में ना, और सारे रत्न समुद्र में है, समुद्र को रत्नाकर कहते हैं। तो रत्नाकर तव गृह मतलब आपका घर तो रत्नों मणि सोना चांदी से भरा है, और गृहिणी च पद्मा, और आपकी घरवाली जो है वो लक्ष्मी है। अब आपको हम दे तो क्या दे, जिसकी घरवाली लक्ष्मी हो और जिसका घर ही रत्नों का आगार हो, उसको क्या कमी हो सकता है? लेकिन हाँ, एक बात की आपको कमी है ठाकुर जी। किस बात की? आधे राम नयना मान साया। आधिर जो वृंदावन की जो गो जाती है ना, गोचारण करने वाले गो, उसको आधिर कहते हैं। और उसकी कन्याए तो जगन्नाथ अष्टकम का दूसरा लयन क्या है? मुदा नारी वदन कमला स्वाद्य मुदा आभीरी नारी, आभीरी कन्या मतलब व्रज की गोप बजी है, बन रहे हो या फिर वो आपके मुख कमल को देखने के लिए जो भी भाव लीजिए।
कदाचित कालिंदित तवीति न संगीत करलो।
अभी आप नीलाचल में निवास करते हो लेकिन आप
सदा श्रीमद वृंदावन वसती,
लेकिन आप तो मूल वृंदावन के वासी हो और वृंदावन की जो ये व्रज वनिता है, गोपिया है, उसने प्रेम से आपके मन को भी छीन लिया है। तो भक्त कहता है कि आप लक्ष्मी आपकी घरवाली है, समुद्र आपका घर है, हम आपको दे तो क्या दे, लेकिन एक बात की आपको कमी है कि आपके पास आपका मन नहीं है, क्योंकि गोपियों ने, अधेरी नारियों ने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने आपका मन भी छीन लिया। इसलिए हे यदुपति, मैं अपना मन आपको देता हूं, क्योंकि आपके पास सब कुछ है लेकिन लगता है कि मन नहीं है। इसलिए गीता में मांगते रहते हैं, मन मना हो, जिसको भी बोलते क्या बोलते हैं, मुझे मन दो मन दो, मतलब आपके पास मन नहीं है, बाकी सब कुछ है। आपको धन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, आप गीता में क्या मांगे, दो बार मांगे, पांचवें अध्याय में बोल दिया मन मना हो, फिर 18 अध्याय में फिर से वही श्लोक बोलते हैं, देखिएगा। तो मतलब आपके पास मन नहीं है ना, और आपका मन वो गोपियों ने ले लिया है, और इसलिए हमारा मन ऐसे भी टेंशन से भरा है, क्योंकि हम सबको परेशान कौन करता है, मन ही तो परेशान करता है। सुख दुख का अनुभव किसमें होता है, चिंता कहां होती है, टेंशन कहां हो रहा है, मन में।
किंदे यमस्ति यदुपते,
इसलिए है यदुपते
कृपया गृहाण,
कृपा करके मेरा मन ले लीजिए ताकि मैं फ्री हो जाऊं। कविराज महानुभाव इसी भाव को लिखते हैं, वो अपनी प्रार्थना में बड़ी सुंदर बात कहते हैं कृष्णदास जी महाराज। भक्तों के लिए जो वचन, ये श्लोक, भगवान के साथ जो संवाद है ना, यही सत्संग है, यही तो सुनना है हमें, ताकि हमारा अंतकरण भी शुद्ध हो और हमें प्रेरणा भी मिले कि हमारा लक्ष्य क्या है। वर्णन आता है चैतन्य महाप्रभु मधुर प्रेम भक्ति रस बरसा हुए बरसाते हुए दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं और भक्तों के साथ जो लीलाएं करते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की लीला जो है ना, वो अक्षय सरोवर है। कविराज जी के शब्द है, वो कहते हैं एक स्थान पर कि हे भगवान, ये गौरांग गुण लीला, ये जो गौरांग महाप्रभु के गुण है, ये जो लीला है, सरोवर अक्षय, मानो एक कभी समाप्त न होने वाला ऐसा जल, ऐसा सरोवर है जिसमें यश रूपी प्रेम रूपी भक्ति रूपी जल कभी सूखने वाला, कभी समाप्त होने वाला है। श्री गौरांग लीला हाय अक्षय सरोवर, मन अंश चरा। आपके मन रूपी हंस को किसमें विचरण कराओ, चैतन्य महाप्रभु की ये जो प्रेम भक्ति का ये सरोवर है ना लीला का, उसमें मुनि जनमानस हंस, मुनियों का मन रूपी जो हंस है वो किसमें किसमें विचरण कराते हैं, दिन मणि मंडल मंडना, जय देव महाकवि। मानो हमें एक शिक्षा दे रहे कि आप अपने मन को भगवान में लगाना, मत चित्ता जो भगवान कहते हैं, मतलब भगवान के नाम में, भगवान की लीला में, भगवान की कथा में लगाना, ये भगवान में मन लगाना हुआ, क्योंकि कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद कृष्ण स्वरूप सब समचिदानंद, कोई अंतर नहीं। कृष्ण के नाम में मन लगाना, कृष्ण की कथा में मन लगाना, कृष्ण की लीला गुणों में मन लगाना, ये प्रकरण से किसमें मन लगाना हो गया, कृष्ण में मन लगाना, और यही जीवन की परिपूर्णता है। बस यही विधि श्रील प्रभुपाद जी ने इस काम के माध्यम से हम भक्तों को प्रैक्टिकली दिया है व्यवहारिक रूप में, कि आप अपना व्यवसाय करते हुए, व्यवहार करते हुए भी किस तरह शुद्ध भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। ये योजना, ये प्लान भक्तिवेदांत स्वामी ने प्रदान किया, और हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे पावन साधु और ऐसी संस्था के भक्तों के आश्रय में, जहां हमें ये सर्व उत्कृष्ट रस मिल रहा, हायर टेस्ट जिसको कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने पृथ्वी पर आकर वृंदावन की प्रेम रस भक्ति का भी सार जो है राधा कृष्ण सेवा, और वो भी निकुंज की माधुर्य रस में सेवा, और उस सेवा की जो आचार्या है सखी ललिता विशाखा, और उसके अनुगत्य में सेवा करने वाली रूप कमल आदि मंजरिया, कस्तूरी आदि अनंग आदि मंजरिया जो है, और हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा का ये जो प्रयोजन तत्व है वह यह है मंजरीश्वर। जब आज तक किसी आचार्य ने या किसी अवतार ने पृथ्वी पर नहीं प्रकट किया, श्री कृष्णचंद्र के मधुराती मधुर रति रस सेवा का जो सुख अनुभव है वो केवल राधा रानी को है पूर्ण रूप से, और उस राधा रानी की सेवा और कृपा के कारण इसका कुछ अनुभव ललिता विशाखा आदि सखियों को है, और उस सखियों की सेवा रत होने के कारण ये जो माधुर्य रति रस सेवा सुख अनुभव जो है वो उस मंजरियों को है। अब सब आज इस पर हम कल थोड़ा विवेचन दे रहे थे, है ना। भक्तों, मंजरियों के अनुगत्य में सेवा करना यही अनर्पित चरिंचिदात संपत्ति है। ये रस राधा कृष्ण मिलित तेनो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी आज श्रवण करने बैठे हैं उस विशाखा से, उस सखी रामानंद राय से, हम सभी भक्तों को प्रकाशित या प्रचारित करने के लिए, कि हम जीवों का परम साध्यतम शिरोमणि तत्व वस्तु क्या है, हम सभी जीवों का परम साध्यतम शिरोमणि वस्तु है श्री धाम वृंदावन में राधा कृष्ण की जो माधुर्यमय सेवा है, और उस सेवा की जो आचार्य सखी मंजरी है उसके अनुगत्य में सेवा करना। और इसीलिए तो स्वधर्म आचरण से जब रामानंद राय चालू किए, महाप्रभु बाह्य बाह्य करते गए, और कुछ बातें जब भक्ति की आई तो महाप्रभु ने हर कहा लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन उसके बाद भी जब प्रेमा भक्ति और राधा प्रेम की बात आई तब महाप्रभु पूर्ण संतुष्ट हुए, ये इस अध्याय में बताया गया है, राइट। इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ, और यह जो सेवा रस रति अनुभव राधा कृष्ण को भी उसकी लीला शक्ति के द्वारा, लीला रस पुष्टि और सेवा सुख जो अनुभव है उसकी लीला शक्ति से आवेशित होकर सर्वज्ञ पूर्ण होते हुए भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय वो भक्ति प्रीति के विषय हो गए, और प्रीति का जो विषय होता है उसे ज्ञान होता है साधारण रूप में कि जो मेरा आश्रय है, जो भक्त है, वो कितना सुख ले रहा है, लेकिन उसका अनुभव नहीं है, और इसलिए उस प्रीति तत्व, उस विषय तत्व कृष्ण को भी राधा भाव सुवलितम गौरांग बनना पड़ा। चौचल सात्यम मदनुभवत ईदृशो वैति लोका। तब आप कह सकते हो कि चलो भाई, श्री चैतन्य महाप्रभु तो केवल कृष्ण नहीं है, कृष्ण जब आश्रय बने तो राधा भाव लिए, अब तो राधा भाव लेने के कारण आश्रय तत्व भी स्वीकार करने के कारण अब तो उसे सुख रति रस सेवा सुख अनुभव हो गया, बोले फिर भी मंजिलों को जो है वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राधा रानी की जो अनुगत्य में ललिता विशाखा आदि मंजरिया है उसको राधा रानी के प्रति स्थायी भाव है, राधा रानी को सुख विदान करना यही उसकी प्रधान भाव है। श्याम सुंदर के प्रति भी उनकी प्रीति इसीलिए है कि श्याम सुंदर राधा रानी को सुख प्रेम देते हैं। तो अब मंजरिया राधा रानी की सेवा में और राधा को रस प्रेम आनंद देने वाले कृष्ण की सेवा में कितना सुख पाती ये अनुभव तो राधा रानी को भी नहीं है क्योंकि वो प्रीति का विषय हो गई। इसीलिए राधा कृष्ण एक तनो श्यामा श्याम गौरांग होते हुए भी कविराज महानुभाव कहते हैं तज ज्ञात्वा उस विशाखा सखी अर्थात मंजरी उस सखी के पास से वो भक्ति रस सिद्धांत पाकर रत्नालयान प्रयाति वो भक्ति रस सिद्धांत के सार रत्नों के महासागर हो गए।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय श्री चैतन्य जय जयचंद्र जय गौरभक्तवृंद
देखिए भक्तों बात बड़ी ऊंची है विषय बड़ा ऊंचा है और हम लोगों की साधना और हम लोगों की स्थिति बहुत निम्न स्तर पर है, इसीलिए एकमात्र आश्रय है इसी परंपरा में आने वाले इसी गौड़ीय वैष्णव सखी मंजरी परंपरा में आने वाले आचार्यों का स्वामी शरण आश्रय। इसके अलावा और कोई हमारे पास साधन है क्योंकि साधना से ये प्राप्त भी नहीं होता, ये गुण साधन के नहीं होई तुम्हारी कृपा पावत कोई कोई। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से श्रवण करने हेतु दक्षिण भारत यात्रा किए है, उससे मिलना ही प्रयोजन आंतरिक रूप में था क्योंकि जब तक परंपरा में आने वाले प्रेमी भक्त जिसका चित्त कृष्ण प्रेम भक्ति रस से मंडित है और ऐसे शुद्ध भक्त के मुख से जब कृष्ण कथा हमारे कान में जाती है तब हमारी भक्ति पराकाष्ठा तक पहुंचती है। और इसलिए महाप्रभु आचरण से सिखा रहे हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ होते हुए भी भक्त मुख से सुनने बैठे रामानंद राय से सुनने बैठे, इससे हमें पता चलता है कि परम प्रेम प्राप्ति का सर्वोपरि श्रेष्ठ सुगम साधन है श्रवण कीर्तन और वो भी वैष्णव साधु मुख से। सिपा जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में बात करते हैं वक्ता के विषय में, एक होता है सराग वक्ता और एक होता है निराग, विषय के प्रति भी अनुराग है फिर भी मनोरंजन के लिए या कुछ पद धन प्राप्ति के लिए वक्ता तो बहुत हो जाते हैं शौक के लिए, लेकिन एक वक्ता होता है जो विषयों के प्रति उसका वैराग्य होता है, उसका चित्त जो है उसकी मनोचित्त वृत्ति जो है वो कृष्ण लीला में कृष्ण सेवा सुखानुभव में रमण करती है। और ऐसे वैष्णव से हरि कथा हमें इस्कॉन में मिलती है क्योंकि प्रभुपाद जी ने रामानंद राय जी के प्रवचन को ऐसे भी रखा है, वो उस तरह के वक्ता है, उसकी व्याख्या करने वाले ऐसे भक्तिवराम स्वामी प्रभुपाद उस तरह के वक्ता है जो उसका तात्पर्य हमारे पास है। और कविराज महानुभाव को चैतन्य चरितामृत की शुरुआत में लिखते हैं ये सब सिद्धांत गूढ़ कहीं पे न जाए, ये सिद्धांत इतना रहस्यमय कि मुझसे बोला नहीं जाता लेकिन ना कहते कहते लेकिन ना कहूं तो वैष्णव के ऊपर ऋण रह जाएगा मेरा क्योंकि मुझे नहीं कहो तो फिर पूरा वैष्णव समाज जिसको गौरांग महाप्रभु ये देना है उससे वंचित रह जाएगा, करूं तो क्या करूं। तब वो कहते हैं कि एक आनंद की बात है जो भक्त भक्त रूप हो गए रसी को बुझी दे रसी को जन ना बुझी दे, वो कहते कि रसिक भक्त होंगे वो इसको समझेंगे और जो मूल होंगे वो तो नहीं समझेंगे और उसे अगर वो नहीं समझते हैं तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कोई है नहीं। इसी बात लिखते हैं अगर मैं जो ये चैतन्य चरितामृत में भक्ति रस सिद्धांत बोल रहा हूँ वर्णन कर रहा हूँ ये भक्त लोग समझे तो आनंद की बात है और अभक्त नहीं समझे ये भी महोत्सव है हमारे लिए क्योंकि अपराध नहीं करेंगे कम से कम जहां है वहीं पर रह जाएंगे गिरेंगे तो नहीं। ये इस बातों को जब हम समझते हैं तब हमें प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञता भाव प्रकट होता है कि इन्होंने हमें क्या दिया है। इसलिए जब हम कहते हैं हमारे आचार्य के भाव को कि यदि गौरव न हई तो तबे की हई तो अगर चैतन्य महाप्रभु जी होते तो क्या होता
राधा रमहिमा प्रेम रस सीमा
राधा रानी का प्रेम रस सीमा जगत जनक के। लेकिन इसी बात को हम कहे इस्कॉन के वर्तमान मायापुर जीबीसी आचार्य सोने ने जय प्रदा का स्वामी के शब्दों में तो उन्होंने कहा है
यदि प्रभुपाद ना होई तो तबे की होई तो
अगर श्री प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता। क्योंकि ये जो प्रभुपाद ने दिया क्या वो कहते
गीता भागवत चैतन्य चरित
प्रभुपाद ने हमें क्या दिया गीता और भागवत दिया और उसका भी सार श्री चैतन्य चरितामृत और कैसे दिया सरल करके
कितना सरल
एकदम हमें इजी करके तात्पर्य व्याख्या कोटेशन स्थिति स्थान देश काल पात्र सब नजर करते हुए जैसे कोई भारी टैबलेट मधु में नदी में घोल के काट के पिला दिया जाए ये काम इस प्रेमी आचार्य ने किया और जिस परंपरा से जिस आचार्य से जिस भक्तों से हमें भक्ति मिला है ना परम गण ऐसे आचार्यों से ऐसी परंपरा ऐसी संस्था के प्रति हमें सदैव नतमस्तक और सेवारत आदर और समर्पण के भाव से रहना चाहिए तब हम इस कृष्ण भक्ति कृपा को पा सकते हैं सरल दास। और इसी बात को महाप्रभु ने अपने जीवन चरित्र से दिखाया सिखाया। कल हमने वर्णन किया था कि महाप्रभु रात्रि हो गई इसलिए नरसिंह देव की स्तुति प्रार्थना करते हुए एक ब्राह्मण ने निमंत्रण दिया जी नरसिंह सिंहाचल विशाखापट्टनम से 5 किलोमीटर आज भी वो मंदिर है जहां रामानुजाचार्य के द्वारा आने वाली परंपरा के श्री संप्रदाय के साधु द्वारा सेवा होती और उनकी स्तुति की और किस शब्द से स्तुति की श्रीधर स्वामी बाबा दीपिका में सप्तम स्कंद में नरसिंह चरित्र की शुरुआत उपक्रम में जो श्लोक बोलते उस श्लोक से
उग्रोति अनुग्रहे वाय समत्ता नाम केशरी स्वपूर्णा
लोग कहते कि नरसिंह उग्र है लेकिन किसके प्रति जो दुष्ट है अभक्त है उनके प्रति क्योंकि वो सिंह है सिंह जंगल में शिकार के लिए जाता है तो अपना प्रभाव दिखाता है अपने स्वभाव से वो गरजता है और शिकार पर त्राप मारता है और उसको फाड़ देता है लेकिन जब अपने बच्चे को देखता है
केशरी स्वपोताना
लेकिन वो शेर भी जब अपने बच्चे के प्रति क्या हो जाता है
अनुग्रह
अपने भक्तों के प्रति तो वत्सल हो जाता है। नरसिंह देव के विषय में लिखा है कि उसके कर जो है नख जो है वो शिनी की तरह थे जो फाड़ दिए वज्र जिसको टकरा कर कुछ नहीं कर पाया ऐसी हिरण्यकशिपु की छाती को वृत्ति का एवं खेल था। चतुर्दशम नरसिंह चौथा अवतार शिव जी भागवत में नरसिंह का कहते हैं और जैसे चटाई बनाने वाला उस घास के सूखे तिनके को चीर गए ऐसे फाड़ दिया लेकिन विरोधाभास नख इतना तेज और हाथ कैसा जैसे भी कहते
तव कर कमल वले नतम अदरुम ललित ही धन्य कसको बनो मेरा केशव सीता रहि रूपा जय लगी सहर
नरसिंह भगवान ऐसे उग्र रूप में दिखते हैं, लेकिन वो असुरों के लिए अपने भक्तों के प्रति इतने वत्सल है कि भागवत जी ने आया है अपने कर कमल को प्रहलाद के सर पर सहला रहे, अपनी जीवा से प्रहलाद के श्री विग्रह को चाट रहे। वो तो प्रहलाद से भी डरे नहीं, हमने से कोई होता तो, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी की हालत बिगड़ गई थी स्वयं, तो फिर हम और आप क्या है, क्योंकि रूप ही ऐसा था। लेकिन एक श्लोक आया है पुराणों में नरसिंह देव के स्वभाव के विषय में। नरसिंह देव जी प्रहलाद को जब सहला रहे थे तब कहते हैं क्वेदम वपु, तुम्हारा वपु जो है वह इदम कितना कोमल है।
सुकुमार क्वेदम वपु सुकुमार एक,
तुम्हारा तुम्हारा शरीर तो कमल से भी कोमल है।
वेदम और इस कोमल शरीर पर प्रमत दारुण यातना दे,
और वो तुम्हारा बाप हिरण्य कश्यप कितनी यातना दिया तुमको, अग्नि में डाला, पर्वत में गिराया, नाक से कटवाया, हाथी से पैर रखकर मारने का तो क्या क्या नहीं किया। लेकिन हे बालक प्रहलाद, हे वत्स, देखिए नरसिंह देव भगवान कितने वत्सल है, क्योंकि अवतार कोई भी हो भक्त वत्सलता सर्वोपरि स्वभाव है कृष्ण प्रेम से। इसको हिंदी में कहा गया है कि नरसिंह देव भगवान इतने करुणा से प्रेम से भर गए कि आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा नरसिंह देव को।
नालोपितं विषममेक अभूतपूर्वं क्षन्तव्य अङ्गयदिने समये विलम्ब।
हे तात, तुझे बचाने में आने में मुझे कहीं देरी हो गया हो तो मुझे माफ कर दो। अब नरसिंह देव कह रहे अभी कोई देरी नहीं हुआ था, क्योंकि बाल बाटा नहीं कर सका हिरण्यकशिपु, मरे नहीं कुछ भी करो, लेकिन फिर भी नरसिंह देव कहते संतव्य अंग यदि में समय विलंब। हे अंग, हे बालक, हे मुझे प्राणों से प्यारे, अगर मेरे आने में देर हो गई हो तो मुझे
मंजुल मुखार विंद चुनी चुनी कहे प्रभु क्षमा करो पुत्र मोहे तेरे भाई आने में।
इसको इसी श्लोक को हिंदी में तो यहां पर श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भले ये बाहर से आपको उग्र लगे, लेकिन ये अनुग्रह करने में पीछे, और ऐसे नरसिंह देव की प्रार्थना से ही तो श्रीधर स्वामी भागवत के तत्व को पकड़ पाए। वागी शायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसी यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंह अहम भजे। मंदिर में ही सो गए, मंदिर में ही आश्रय लिए, क्यों? क्योंकि मंदिर में रहना मतलब भगवान के घर में रहना। बहुत भाग्य है उन भक्तों का जो फुल टाइम डिवोटी है, क्योंकि राधा गिरधर ही होती है। ज्ञान नहीं होने के कारण कभी कभी लगता है अरे मैं क्या कर रहा हूं, चलो मैं भी जरा बाहर जाता हूं मरो मरने। भागवत जी में उद्धव जी को कृष्ण कहते वन्य तो सात्विकम वासो, गृह और घर में रहना तो रजोगुणी है, द्विताल आदि जो है वो तमस है, लेकिन मत निकेतन तुम निर्गुणम, लेकिन मेरे घर में रहना मेरे धाम में रहना ये निर्गुण वास कहलाता है। और इस सौभाग्य के लिए शिव ब्रह्मा तरसते हैं प्रभु प्रभुपाद जी को कोटि वंदन करिए कि पूरे विश्व भर में इस्कॉन प्रभुपाद जी ने ऐसा घर बना, ही बिल्ड हाउस एंड होल वर्ल्ड कैन स्टे है। श्रील प्रभुपाद जी ये अवसर दिए हम लोगों को भगवान का सानिध्य प्राप्त करने का, और इस अवसर को हमें लूटना है, प्रयास करना है कब टाइम मिले और जाए भगवत चरण में, भक्त चरण में, और हमारा उल्टा है कब खत्म होगी जाए उस माया में। मतलब अभी हम भक्ति रस को टेस्ट लिए नहीं है, सही समझे नहीं है, इसलिए साधु सब ने शास्त्र सुनना है तभी ये कनिष्ठता से उत्तम अधिकारी बनेंगे, क्योंकि उत्तम अधिकारी का लक्षण महाप्रभु ने कहा शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ श्रद्धाधार। उत्तम अधिकारी को ही तारे संसार, वो खुद भी तरेगा और को भी तारे, इसलिए अवसर मिले ना जब भी गिरधारी के दर्शन का, भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन का या सेवा का, उसको चूकना नहीं है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। प्रभुपाद कहते थे कि ये महामंत्र में भी यही भाव है कि हे राधा गिरधारी हमें अपना सेवक समझकर आपकी सेवा में लगाइए, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही प्रार्थना की पूरी में भगवान के चरणों में, ऐ नंद तुंजकिंकरं पतितं मां विष्णे भवान् बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं प्रभु शिक्षा अष्टकम श्लोक जई पढ़े सुने कृष्ण प्रेम भक्ति तार बाड़े देने देने। और हम लोग शिष्टाचार जब सुबह चलता है तब भी घूमते रहते क्या करूं क्या करूं, और ये तो कॉमन है हमें आता है। और कविराज जी कहते हैं कि प्रभु शिक्षा अष्टकम श्लोक जई पढ़े सुने, समझे चिंतन करे उसकी बात तो छोड़ दीजिए, जो पढ़े और सुने कृष्ण प्रेम भक्ति का बाढ़े दिने, उसके क्या होगा उसको उसको लाभ क्या मिलेगा, कृष्ण प्रेम चरणारविंद की भक्ति दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। ये महात्मा है शिक्षा अष्टकम का, जब सुनेंगे ना तब शिक्षा अष्टकम बोलने का मन होगा, जब कोई गा रहा है तो सुनने का, ये है सत्संग। इसलिए हमें सिद्धांतों को समझना है सूक्ष्म। महाप्रभु सोए उसी जीर नरसिंह क्षेत्र में, मैं आपको बता दूं जिसके मन में इच्छा है कि सुबह उठकर भगवान का दर्शन करूंगा, जप करूंगा, कीर्तन करूंगा, और ऐसा शुभ संकल्प करके जो भक्त सोया है ना उसका सोना भी समाधि है, क्योंकि वो सोया इसीलिए है कि अपने शरीर और वाणी से फिर कृष्ण सेवा के लिए रेडी हो जाए, यदि साधना में आ जाए, क्योंकि वो अपने आप को दीक्षा काले भक्त करे और भक्त देव प्रभु वो कभी प्राकृत नहीं, सब चीता आनंदमय होता है, और इस भाव से समझेंगे ना तो आप वैष्णव अपराध से भी बच जाएंगे। क्योंकि रूप गोस्वामी ने क्या कहा उपदेशामृत के पांचवें श्लोक में, सॉरी छठे श्लोक में, दृष्टानुयन आप देखते हो दृष्टि वपु स्वभाव दोषे न प्राकृतत्वचत् भक्त जनस्य पश्ये, भक्त जन में अगर उसके स्वभाव में या उसके वपु में कोई दोष दिखता है फिर भी आप उसको प्राकृत मत समझो, साधु एवश्च मंतव्य सम्यक व्यवस्थित। फिर आपका हमारा क्या अधिकार है, हमारा तो बस श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास रनुदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास, हमारा एक ही गोल है कि सब भक्तों के दासों के दास भाव में मुझे सेवा कहां मिलेगी, यही खोजना है। और ऐसा विचार वाला भक्त सो तो भी वो साधना समाधि क्योंकि वो सेवा करके सोया है, साधना करके सोया है, इसलिए भगवान की कृपा से उसका चिंतन भी बहुत शुद्ध स्तर में हो सकता होगा। आगे चल, सुबह हुआ, चैतन्य महाप्रभु जी जागे, कविराज महानुभाव के शब्दों को गौर कर देखे और आगे जाइए हमारे साथ प्रभाते उठिया, आगे लीजिए उस लोग को और आगे बढ़ाइए। आप सभी गौर कर देख सकते हो और जा सकते हो।
प्रभाते उठिया प्रभु चलिला प्रेम प्रभाते उठिया प्रभु चलिला प्रेम
चैतन्य महाप्रभु प्रभात उठिला, चैतन्य महाप्रभु प्रेम में से उठकर प्रेमावेश हमेशा प्रेम में भाव में महामंत्र के रस में डूबे रहते थे चैतन्य महाप्रभु। और जो रस में डूबा रहेगा वही तो दूसरे को डूबा सकता है ना। गंगा यमुना प्रयाग नारी डूबाई थे। आज का कविराज महानुभाव कहते हैं कि रूप गोस्वामी ने देखा इस दृश्य को, गंगा जमुना वर्षों से थी लेकिन आज तक नहीं डूबा पाई, प्रभु डूबाई थे कृष्ण प्रेम भरने आते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम सागर प्रेम गंगा में डुबा दिया प्रयाग को। लाखों लाखों लोग महाप्रभु के साथ कीर्तन करते, इसलिए आचार्य ने गया के जादे, के जादे भाई सिंधु पार। अगर आपका मूड बनता है कि हमें भव सागर से छुटना है तो इसीलिए अवतार हुआ है।
धन्य कलयुगे चैतन्य अवतार,
कलयुग को भी धन्य कर दिया। क्या सतयुग का भी वो मजा है जो मजा कलयुग में आ गया गौरांग के कारण। बड़े बड़े सतयुग में जन्म लेने वाले ऋषि मुनि प्रार्थना करते कि अब जन्म लेना है, क्योंकि इस कलयुग को भी धन्य टाइटल मिल गया गौरांग की कृपा से। प्रेम में डुबा लिया, हमेशा प्रेमाविश में रहते थे, कहीं भी जाते थे किसी को गाया है ना,
ढूंढे ढूंढे गोराचा हरि गुण गया,
कहीं भी जाते थे उसका मूड हमेशा वृंदावन में। उस समय तो आशिया वृंदावन है, वृंदावन में गए भी दो महीना, लेकिन जहां भी स्मरण हमेशा वृंदावन का रहता था। ढूले ढूले मतलब प्रेम से, जैसे मतवाला हाथी झूमता है ना ऐसे, जिसमें देह शुद्धि नहीं। कविराज जी कहते दिक विदिक, मुझे उत्तर जाना है कि दक्षिण, पूर्व या पश्चिम, कोई भान नहीं, किस दिशा में जाना है या रात्रि है कि दिवस है वो भी पता नहीं रहता था। भजन में इतनी मस्ती होती थी कि देव शुद्धि नहीं, काल का भी भान नहीं, जैसे हमारे आचार्य को निद्रा आहार विहार का अष्ट प्रहर भजन चारि दंड शयने सर गोस्वामी के विषय में लिखा है, और नाम संकीर्तन केहो कौटिल्य में, और कभी कभी नाम कीर्तन में इतना रोष आता था कि वो चारि दंड भी शयन नहीं, और हम लोग को 8-8 घंटा सोने पर जागने पर भी माला करते ही सीधा शयन आता है, तो क्या दशा है। दुर्दशा है, ये दशा नहीं है। दुर्देव भी इसीलिए भक्तों इन आचार्यों की वैष्णव के प्रति भक्ति लोग ठाकुर ने रोते रोते मांगा, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया यह कृष्ण नाम धने, कृष्ण नाम में मेरे प्रेम मेरी श्रद्धा कृपा करके दे आचार्य आप दीजिए, क्योंकि कृष्ण प्रेम आपकी संपत्ति है और आपकी कृपा के बिना कोई उसे पा नहीं सकता। ये भक्ति भगवान नहीं दे सकते भाई, मुक्ति कदा की कर्मचित मन भक्ति हो गए। कविराज महानुभाव इसी का अनुवाद लिखते हैं, कृष्ण भक्ति मूल बल साधु सन, कृष्ण भक्ति जुड़े रहो संसार में। इसी बात को अन्य रूप में भी कहा गया, महा कृपा बिना कोट कर्म भक्ति ना, क्योंकि भगवान भी भक्ति देकर फंसते हैं ना, इसलिए कहते कि भाई भक्ति मुक्ति दिया भक्त यदि छूटे कबू प्रेम ना दे, बोले तुम चारा ना आठाना लेके चले जाओ तो हमारा फायदा ही है। लड्डू पेटा दास नाम तो हो गया कृष्ण दास, लेकिन अभी तुम बने नहीं हो, मंदिर भी आते हो तो भगवान से भगवान मांगने के लिए नहीं, भक्ति मांगने के लिए नहीं, बदम दही एक ही हो गई हो गई। अर्चन की कुण को भोग्यन गुरु जी कहते हैं कि जो ऊपर शुक्र को भी विषय को भी जो सुख विषय भोगी को मिल रहा है जगत में, तो भगवान के पास जाकर भी वही मांग रहा है, अमृत छड़ी विष मांगे। इस शब्द को समझते हुए इस पर चिंतन करना है कि हमें क्या करना है। पूर्व भक्तों वैष्णव करी जहां भी चैतन्य महाप्रभु जाते थे चलते थे, जैसे आगे वर्णन आया पूर्व क्षेत्र में या फिर प्रयाग में, सबको प्रेमी वैष्णव बनाते थे, ऐसे बनाते हुए जा रहे थे। कुछ दिनों के बाद चैतन्य महाप्रभु के विषय में कविराज जी ने कहा, गोदावरी गंगा की एक धारा है, भक्तों पंचम स्कंद के सुखदेव जी गंगा तट पर कहते भारत की प्रजा, भारत की प्रजा का ये सौभाग्य रहा है क्या, नाम भी रेव पुनंती तम आत्मना चोक स्पृशंती, और फिर 18-20 नदियों का नाम लिया है, रेवा नर्मदा आदि, उसमें तापी आदि, सिंधु कावेरी, उसमें गोदावरी का भी नाम है। और सुखदेव जी कहते कि ऐसी नदियों के तट पर जो रहता है वो बड़ा सौभाग्यशाली आत्मा है। प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसी नदियों का जो नाम लेता है, जो भागवत कह रहे हैं नामा भी रेव, इन नदियों का केवल नाम ले, जलम स्पर्शन दी या फिर उसका स्पर्श करे या स्नान करे, पुनंती वो पवित्र हो जाएगा, पापों से मुक्त हो जाएगा। नदियों का नाम लेने से, उनमें स्नान या उसका पान करने से पापों से मुक्ति और पवित्रता प्राप्त होती है, और ये सौभाग्य भारतवासियों को, भारत की प्रजा को मिला है। सुखदेव जी कह रहे और ऐसे गोदावरी के तट पर आए, आज के वर्तमान क्षेत्र में आपके जानकारी के लिए आंध्र प्रदेश जो है हमारा आंध्र, उसमें एक नाम है शहर का राजमंड्री, और राजमंड्री के तट पर गोदावरी नदी है, मद्रास से कुछ किलोमीटर दूर होता है ये राजमंड्री में, पता मद्रास को पता होगा आप लोगों को, रामा अरविंद राय वहीं रहते थे, और वहां से जो गोदावरी तट जहां पर चैतन्य महाप्रभु बैठे थे या मिलन हुआ, वो कोर करके आज भी स्थान है। कविराज जी कहते हैं गोदावरी, अब गोदावरी के निर्मल जल को देखकर महा महाप्रभु को क्या याद आया,
गोदावरी देखी हुई तो यमुना स्मरण।
गोदावरी को देखकर चैतन्य महाप्रभु जो मूल तत्व का कृष्ण है और यमुना तीरा वन चारी है, याद आ गई यमुना। और फिर हमेशा आप किसी भी नदी के तट पर देखो हरियाली होता ही है, वन वन जैसा वातावरण, लताए पताए पेड़ होता ही है। और उस आजू बाजू तट पर देखा तो कविराज जी कहते हैं तीरे वन देखी स्मृति वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु जी को वृंदावन का स्मरण हो गया। देखो स्मरण की बहुत महिमा है। यम यम बापी कलेवरम। और हमारी जो पद्धति है ना, गीता के सिद्धांत के अनुसार भी हम बात करें ना, तो यही विभूति जो भगवान ने गिनाया स्मरण कराने के लिए हम लोगों को, कि हम सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं देख रहे लेकिन जड़ जगत को देखते पढ़ते सुनते हैं, क्योंकि प्राकृतिक इंद्रिया प्राकृतिक ग्रहण करती है। लेकिन वो प्राकृतिक वस्तु ये प्रकृति भी भगवान की शक्ति है, उनकी विभूति है, और उस बहाने स्मरण करो। इसलिए साथी अज्ञान ने कहा रसोत्सुक अंते, पानी पियो तो याद करो अर्जुन, इसमें जो स्वाद है वो मैं हूं। प्रभा अश्मि शशि सूर्य यो, ये चंद्र और सूर्य में जो प्रकाश है तेज हो मैं हूं। आदित्य गतम तेज हो अर्जुन भाषण थे पंद्रह अध्याय में कहा, यह अग्नि जब चंद्र में सुख तेजो विधि मांगतम, अर्जुन मुझसे आया है। और इसी विधि को आचार्य ने सिखाया है,
स्थावर जंगमा देखे देखे तार मूर्ति सर्वत्र तारो ईश्वर देवे स्मृति
इत्यादि में संपन्न है। ब्राह्मण है जो गृहस्थी में किसी को भी कभी भी कुछ भी देखता है, क्या देखता है, कृष्ण को देखता है। गोस्वामी ने भक्ति ऋषान सिंधु में 1.2.294 उद्देशामृत का जो 9वां श्लोक है ना, राधा कुंड गिरि तटे, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने यह श्लोक डाला है। आप पढ़िएगा, हम साधक भक्तों के लिए एक सुंदर शिक्षा दी है कि किस तरह साधक होते हुए सिद्धि साधना के द्वारा सिद्धि स्तर को सरलता से पाया जा सकता है। जो हमारा बड़ा ऊंचा सिद्धांत सेवा साधक रूपे न, बाहर से तो साधना में रहता है व्यवहार करता है लेकिन सिद्ध देश सेवा में रहता है, जैसे हमारे सिद्ध आचार्य रहते थे। उस स्थिति में आप कैसे रह सकते हो, तब वो कहते
कृष्ण स्मरण जनस्य संहित तत्कथारतश्चासु कुर्याद्वा संप्रजे सदा।
आप हमेशा ब्रज में रहना चाहते हो, वृंदावन में क्या विधि है, उस वृंदावन की लीला, उस वृंदावन के उपकरण उपादान जो भी है, वृंदावन में सामग्री है। भक्ति विनोद कहते राधा कुंड तट कुंज कुटीर, ये सब छोड़त कहां नहीं जाओ। अब आप छोड़ के तो आप जज बने हुए हो, बाह्य रूप से आप पूछ सकते हो प्रभु जी, लेकिन बाह्य रूप से ना, आंतरिक रूप से ठाकुर कभी गए नहीं। बात ऐसे ही शुद्ध प्रभु का है, लोग कहते हैं कि भाई वृंदावन से 1965 में जलदीप में चढ़े मिला है, लेकिन वास्तविकता क्या है, प्रभुपाद अपने हृदय में वृंदावन को लेकर गए, कभी वृंदावन छोड़ा नहीं, और हजारों लोगों को करोड़ों लोगों को वृंदावन का रास्ता दिखा दिया। और इतना ही नहीं, जहां गए वहां वृंदावन खड़ा कर दिया। श्रीमद् प्रभुपाद जी आज भी अपने वृंदावन, एक वहां भक्त जहां जाता है वहां क्या कर देता है, वृंदावन कर देता है। क्योंकि जहां कृष्ण सहित वृंदावन, क्या कहते बंगला में कृष्ण कोल्हा है, मंगलम जी बोले थे कृष्ण कोल्हा है, श्याम कोल्हा राधा कोल्हा गिरि गोवर्धन मधुर मधुर वंशी लागे शैल वृंदावन
जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन गोविंद गोपी नाम श्याम कुंड राधा कुंड गोवर्धना जय जय महाराष्ट्री घाट वंशी वट द्वादश यहाँ से बलीला कैल नंदन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन वृंदावन की अधीश्वरी कौन है राधा रानी जी ऐसे कृष्ण वृंदावन के है आराध्य भगवान ब्रजेश तनयम दत्ताम वृंदावन लेकिन इस वृंदावन के ईश्वर वो नहीं है ब्रह्म ही ढूंढो पुरानन गानन इस परम ब्रह्म के लिए मुनिंद्र योगिंद्र ध्यान करते हैं वैद नीति नीति करता है बैठक पलटक राधिका पावन होता राधा रानी के चरणों में क्योंकि वहां की राशेश्वरी वहां की निकुंजेश्वरी वहां की सर्वेश्वरी श्री कृष्ण नंदिनी है और कृष्ण से करुणा करने में डबल टिबल में हजार गुने आगे कृष्ण करुणा सिंधु है फिर भी तरसाते हैं कृष्ण तरसाने वाले हैं लेकिन राधा रानी बरसाने वाली है वो बरसाने वाले और इसलिए इसी कृष्ण को जब करुणा करनी पड़ी ना तब ये करुणा किससे मांगनी पड़ी हृदय किसका लेना पड़ा राधा रानी का बोले करुणा तो है एक बार समझाऊंगा दो बार दस बार नहीं सौ गलती माफ करूंगा 101 में सुदर्शन निकलेगा शिशुपाल की सौ माफ की लेकिन कलयुग में मीरा रोड के महाराज के लोग तो ऐसे 108 की तो मांगा करते हैं मतलब 108 और गलती अपराध को रोज करना है और रोज का महीने का साल का कितना हो गया तो कृष्ण की करुणा सूख जाएगी और क्या करना पड़ेगा विनाशाय च तो फिर बोले अवतार लेने का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा इसलिए हे वृषभानंद नंदिनी आप आइए हमारे हृदय में आइए मीरा बाई कहती है सब जग को ये माखन चोरा नाम भैरव वैरागी चोर सन्यासी बना है अरे भाई आदमी कितना भी पोस्ट पर आ जाए आदर स्वभाव जाता नहीं राधा रानी का वर्ण कृष्ण वर्णन पिसा अकृष्णम हो गया गौरान बने कभी तो ये महावदान्य अवतार होगा ना नहीं तो फिर वही विनाश है क्योंकि कलयुग में तो सब भरे पड़े इसलिए श्री वृंदावन के वास के लिए करुणा राधा रानी की जो क्योंकि श्याम सुंदर को भी वहां एंट्री उसकी कृपा से मिलती है राधा रस सुदाम जी ने प्रबोधन महाराज लिखते हैं काको भर जग गया जवाचा राधा रानी के निकुंज में ललिता विशाखा खड़ी रहती है तो गिरधारी को प्रार्थना करनी पड़ती है ललिता तेरे स्वामी जी का मुख चंद्र देखने मिलेगा बोले नहीं महाराज माफ करो बोले श्री जी देखना ही नहीं चाहती बोले क्यों बोले उसको पता चल गया कि आप जितने बाहर से काले हो ना इससे हजार गुना अंदर काले हो अभी पता चला अभी अभी और इसलिए उसका हमें आज्ञा है कि आपको एंट्री नहीं है और जिसके लिए गोविंद आदि पुरुषम होता है उसको यहां एंट्री नहीं है तब कभी भगवान जी लिखते काकू भर गांचा भगवान काकू विनंती करते आदि जी करते हैं कि प्लीज अब की बार माफ करो अब ऐसा नहीं करेंगे बोल ये है ये राधा रानी का साम्राज्य इसलिए वृंदावन के लोग मांगते हैं श्री वृंदावन वास मिले प्रिय जी हमारी आशा है
माधुरी, लीला माधुरी का परम सर्वोच्च स्थान,
सेवा कुंज,
श्री वृंदावन के पावन लीला स्थलियों का भक्तों स्मरण करिए, जहां जहां की आश जहां की प्रार्थना भक्त लोग करते हैं, लाइए या सुनिए,
श्री वृंदावन वास मिले, बस यही हमारी आशा है, वह यमुना तट छाव कुंजन की, जहाँ रहने को तावसा है, मनोहर निधुवन जहाँ एक रस बारो मासा है, ललित किशोर दिल मेरा
उस जगत रूप का प्यासा है,
कैसे तुम्हारी
चरणों में ब्रज के प्रेमियों का यह निवेदन है, भक्तों रसिकों का यह पद है जो निवेदन हो रहा है। द्वारकाधीश श्याम सुंदर भी सुरदास जी ने गाया है, सोने के महल में और मखमल से जड़े हुए गालीचे में दूध की फेन और चंद्रमा को भी फीका करे ऐसा वही चादर लगा है, और लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी चामर डुला रही है, और कमल नयन से कृष्ण के नयनों से अश्रु बह रहा है। रुक्मणी जी पूछती है, स्वामी हमारी सेवा में क्या करनी है, करोड़ों दासियां होते हुए भी हम 16108 आपकी सेवा में लगी हैं, क्या करो रहे हो। श्याम सुंदर कहते हैं, मोहे व्रज द्वारिका में क्या कमी है प्रभु, यहाँ भी तो वन है, यहाँ भी तो सब सड़के। द्वारिका का वर्णन आप सुनिए भागवत जी में, रत्न मणि के खंभे लगे हुए हैं, सुवर्ण के कलश लगे हुए, सब जगह पूरी द्वारिका में पुष्प के प्योर अत्तर को छिड़का जाता था। ऐसा नहीं कि कहीं गटर बह रही है, कहीं लिखा है देसी दारू, सब कचरा यहाँ होता है। द्वारिका का वर्णन भागवत में सुनेंगे ना, एक बार मूड बने करके चले जाए द्वारिका में रहते हैं, इतना सुंदर वर्णन है। तो क्या आपको ये सुखाता नहीं था? लेकिन वृंदावन जैसा आनंद नहीं है। 16,108 पटरानी पर कोई राधा सुनना, जो भक्ति करते हैं ना इसका भंडार भी राधा रानी के चरणों में, क्योंकि तो भक्ति भी आलादिनी शक्ति का विलास है, उनकी कृपा के बिना कोई भक्ति भी नहीं कर सकता। और इसलिए श्याम सुंदर होते हुए कहते हैं, हे राधे कौन कियो अपराध किहारो, अरे हमने कौन सा अपराध किया, काढ़ी दियो ब्रजमंडल से, हमको ब्रजमंडल से बाहर फेंक दिया, अरे कोई और दंड दे देती, कृपा करके अपराध माफ करो और हमें भी वृंदावन में ले लो, भगवान प्रार्थना करते हैं। ये है वृंदावन और ये है राधा रानी। इसलिए तत्वम को तत्व जब जीवन श्री कृष्ण चंद्र है, गीता में कहते कश्चित मान देव तत्व का सहस्त्र हजार सहस्त्रों को नहीं जानता है, लेकिन हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि ऐसे हजारों लाखों कृष्ण के जानने वालों में से कोई एक राधा को जानता है, जीवन से कृष्ण चंद्र तत्व को तत्व, उस कृष्ण के तत्व को तत्व राधा रानी है। कविराज महानुभाव ने चैतन्य महाप्रभु की लीला से वैष्णव जगत पर उपकार किया है चैतन्य चरितामृत लेकर, इसलिए राधा महिमा प्रेम रस सीमा, अगर गौर न हो तो होता ही नहीं। लेकिन बहुत ऊंची बात हमने आपके सामने रखी है और हमारी स्थिति बहुत निम्न है, लेकिन निम्न भले हो लेकिन हमें लक्ष्य का तो पता होना चाहिए कि यहाँ जाना है और इसके लिए हम साधना करेंगे, इसके लिए हम सेवा करेंगे, अपने आप को स्तर और शुद्ध दस पर लाने का प्रयास करेंगे विनम्र भाव से। और एक दिन इसी राधा रानी, इसी सखी, इसी मंगली आचार्यों की कृपा से सरल बात सबसे पहली विधि है स्मरण, सुनना, श्रवण, इसका कीर्तन। और ये सबसे जितना श्रवण बढ़िया करोगे ना उतना ही बढ़िया कीर्तन होगा, जितना श्रवण कीर्तन बढ़िया होगा उतना ही बढ़िया स्मरण होगा, क्योंकि बिना श्रवण कीर्तन के जो स्मरण की बात कर रहे हैं वो भी बाहर है, क्योंकि तुम जानते ही नहीं, देखे नहीं क्या स्मरण करेंगे। स्मरण उस वस्तु का हो सकता है, उस व्यक्ति का हो सकता है जिसको देखा हो, एटलीस्ट देखा नहीं, उसके विषय में सुना हो, सुना ही नहीं देखा ही नहीं क्या स्मरण करोगे। आपके मन में उसी वस्तु को सोच सकते हो जिस वस्तु के विषय में या जिस व्यक्ति के विषय में आपने सुन रखा हो या देखा हो। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं कि जिस वस्तु को आपने देखा ही नहीं, जिस वस्तु को आपने सुना ही नहीं, उसको स्मरण करो, और फिर पॉसिबल है ये हो सकता है? देखा होना चाहिए, तुलसी महारानी देखा है ऐसे कलर, ऐसे निर्धारित मंदिर देखा है, देखा नहीं तो सुना, किसी सुनना चाहिए था ऐसे बोलता उसके बीच में जो सुना है, तो कुछ आप पहुंच सकते हो। तो श्रवण और कीर्तन के बिना स्मरण, और स्मरण के लिए हम श्रवण कर रहे हैं और इसको आप कहीं भी रहो सोच सकते हो, स्मरण कर सकते हो। महाप्रभु ने वृंदावन देखा है, आज उस गोदावरी के तीर को देखकर क्या याद आ रहा है, उस वृंदावन याद आ रहा है। श्री प्रभुपाद ने इस्कॉन की सेवा साधना पद्धति इतनी शास्त्रों से शुद्ध बनाई है कि आप इस्कॉन के मंदिर में जाओ या वृंदावन में जाओ, वृंदावन का ही लुटना है, जो वृंदावन में जाके करना है सेवा साधना श्रवण कीर्तन दर्शन, वही अवसर यहाँ पर भी हमें प्राप्त हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने गोदावरी के तट पर जब पहुंचे तो वृंदावन का स्मरण किया और विशेषकर कविराज महानुभाव के शब्दों को हम आगे बढ़ाए। महाप्रभु के आगे का तैयार करो इसको।
गोदावरी घाट छाड़ी कत दूरी जल सन्निधाने वसी प्रभु कृष्णा नाम संकीर्तन वसी प्रभु
शरीर भी शीतल होगा और मन भी पवित्र होगा। और याद
देवी मेरे शरीर की रोटी होगा, तुम्हारा खाओ, वॉल्यूशन इतना है और टेंशन ही टेंशन।
गदा हम जमुना तीरे नामानि तव संकीर्तनम्
मेरा भंग हो रहा है कि मैं यमुना के तट पर जाऊं और अपना गमछा या चादर उछाल उछाल के जैसे नटराज कैलाश में तांडव करते हैं ऐसा कीर्तन करूं।
अगर किसे सुंदर मेधा सुंदर शुद्ध बुद्धि जिसके पास है वही ये संकीर्तन करेगा, बाकी तो उत्प्रदान करेगा। ये आसन वो आसन पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग, लेकिन जो सुनेगा भगवत गीता के ज्ञान के लिए भी शंकराचार्य ने लिख दिया सुधीर भोक्ता सुंदर दिया जस्य स सुधी, सुंदर बुद्धि जिसके पास है। और भागवत भी कहता है सुमेधसा, जिसकी सुंदर बुद्धि है गुरु वैष्णव कृपा से जिसका बुद्धि उच्च स्तर पर चला गया वो ये संकीर्तन यज्ञ करेगा, बाकी तो सब। और जो कृष्ण का कीर्तन छोड़ के कुछ और करते हैं, निर्धारित इष्ट आराध्य नंदन नंदन को छोड़ के किसी और को भजते हैं, तो सूरदास जी कहते हैं गजराज को छोड़ के गधा पर चढ़ता है। बबुल को छोड़ के अरे ये कल्प वृक्ष को छोड़ के बबुल के पास बैठा है। जिन मधुकर अमृत रस चाखे हो क्यों कई पल भावे, जिसने जिसने अमृत कमल के रस को छू लिया है वो कमरा कभी करेला कभी जा सकता है वहां। ये तो उन लोगों का दुर्भाग्य है, लेकिन जो सुमेधा है भक्तों ये वृंदावन, ये वृंदावन की कथा और ये संकीर्तन सुंदर प्रसन्न आए अच्छा लगे उसके लिए निर्मल हृदय भी चाहिए। वृंदावन के लिए आशा हो संकीर्तन का हो, ये पाप शून्य हृदय की पहचान है ना। वृंदावन कृष्णा कीर्तन उसे ही अच्छा लगता है जिसके पाप मिट चुके हैं, जो पवित्र हो चुका है, जिसका हृदय निर्मल हो चुका है। निर्मल चित्त तो सुनी साचो कृष्ण बिना जिन मोर न भाय, सोई रस ना जो हरि गुण गाए।
वाणी गुणानुगत ने श्रवण कथाया दामोदर चरण ने जो प्रार्थना की अम्बरीश ने चरितार्थ किया वंचा शिव और ऐसा स्थिति ऐसा साधना कब आता है जब कृपा होती है, विषय से मन शुद्ध होता है जब नित्यानंद प्रभु की कृपा हो। बताया ना
विषय
Thank you. चरितामृत की इस पावन गंगा में स्नान कर रहे हैं, क्योंकि ये भगवान की कथा भी एक गंगा है। राम कथा सुर सरित धारा वासुदेव तथा कृष्ण नाम जी की बात है भागवत के अनुसार। ये क्या है? चैतन्य चरितामृत की गंगा है, और उसमें आप लोग बैठे हो सुन रहे हो, ये भी स्नान हो रहा है, और वहां महाप्रभु ने स्नान करके संकीर्तन किया, तो हम भी इस कथा यज्ञ में, इस कथा स्नान में क्या कर रहे हैं? संकीर्तन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महाप्रभु ने स्वयं कहा है और जो मध्य श्रेष्ठ भगवीता भक्ति, जितने भी भजन है उसमें श्रेष्ठ क्या है? नवदा भक्ति।
श्रवणम कीर्तनम
भजन जितने भी है उसमें श्रेष्ठ नवदा भक्ति, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवदिदा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते भरे महाशक्ति। और फिर महाप्रभु कहते कारम मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, और इन सारी नवदा भक्ति में श्रेष्ठ क्या है?
भगवान के नाम का संकीर्तन।
मेरा पराधे नाम पावे और अपराध छोड़ के अगर इसका कीर्तन किया जाए तो कृष्ण प्रेम रूपी महासंपदा को पा जाओगे। बड़ी सुंदर बात और सार बात,
कवि काल नाम धर्म नाम संकीर्तन,
ये तो सब जानते सर्व विदित है, लेकिन होता नहीं है।
कृष्ण शक्ति बिना नहीं कार प्रवर्तन,
इसी कृष्ण की कृपा और शक्ति भी तो चाहिए, इसलिए जब भी गिरधारी के शरण में आओ प्रभु पाओ प्रणाम में जब आप अपना सर झुकाओ शुद्ध भाव से हाथ जोड़ के यही मांगो कि हे प्रभुपाद हे गिरधारी आपकी जो शुद्ध भक्ति है सेवा है उसमें हमें शक्ति दीजिए, उसमें हमें बल दीजिए, क्योंकि ये जीवन की परिपूर्णता है और इसी से सब काम हो जाए। हरिदास साधु केवल संकीर्तन करते थे, महाप्रभु जी ने कहा क्षण क्षण करे तुम्हें सर्वतीर्थ स्नान, क्षण क्षण करो तुम्हें यज्ञ तपदान, निरंतर करो तुम्हें चारी विद्या ध्यान, ये तुम्हें हरिद्य तुम्हें परमता पर जिसके घुट में महामंत्र है ना तो सर्वश्रेष्ठ, उसने सब कर लिया है, अहो बेटर से पचहत्तर कर लिया है, क्या बाकी है उसको। इसलिए भक्तों महाप्रभु स्वयं अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि कई तीर्थों में कई भक्तों के संग में कभी पवित्र स्थान में कहीं भी कीर्तनीय महाप्रभु मंद मंद संकीर्तन कर रहे थे। उसी समय कविराज कहानी को आगे कहते हैं,
काल दो नाई चली रामानंद
Oh,
सुंदर पवित्र प्रसंग कविराज वर्णन कर रहे हैं। उसी समय क्या हुआ, रामानंद राय लोधा एक पालकी के चढ़ पर उभरा है और एक प्रोफेसर, एक प्रोफेसर एक जुलूस जैसा था, कई सारे ब्राह्मण उसके साथ चल रहे और साथ में मृदंग करताल वाद वाजिंद्र वाजना बजाए हो रहा था। जैसे रथ यात्रा में रथा लोडो गच्छन पथि मीलित भूदेव पटले, एक बार हमसे पूछा कि अरे हम पटेलों का नाम तो सुनना है, तुम क्या पटले बोला पटेल नहीं है पटेल पटले पटले मतलब समूह होता है, जैसे कमल पटल, कमल की बहुत सारी पंखड़िया हो तो किसी वस्तु के समूह को ग्रुप को संस्कृत में पटेल पटले कहते हैं, समझा पटेल बोले पटेलों के साथ में चल रहे थे क्या बोला, हाँ प्रभु बात की कृपा से आज देश विदेश में सारे पटेल रथयात्रा में कोई भाई चलते हैं पटेल लोग भी रथयात्रा में चलते हैं, मेरे भी चलते हैं ना प्रभु पटेल लोग पटेल लोग चल रहे हैं पटेल रथारूढ़ गच्छन, ये भी एक बड़ा सुंदर, क्योंकि रामानंद राय राजा प्रताप रुद्र की आदेश में बहुत बड़ी ऊंची मंत्री थे, वहां की कर वसूली करते थे तो उनका अपना साथ समझ था। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि उसके साथ में और भी ब्राह्मण है और भी लोग है और वाद वाजेंद्र जुलू से पालकी निकल रहा है जैसे कोई राजा निकल रहा हो, और सब ने क्या किया, सारे ब्राह्मणों ने स्नान किया उस गोदावरी में। तो उस समय क्या है कि गोदावरी में पुष्कर मेला लगा हुआ था, सब लोग स्नान करने आ रहे थे, कभी कभी होता ना नदी में स्नान रेगुलर लोग करते हैं लेकिन किसी विशेष काल स्थिति में सूर्य ग्रहण के समय या सोमवती अमावस्या ऐसे स्थानों में विशेष स्नान होता है ना, सब लोग जाते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, ऐसे कुछ स्थित अवसर था, कुछ उत्सव था और इसलिए रामानंद राय विशेष आए है। एक बात बड़ी सुंदर लिखी जा रही है, मते कैलास स्नान, स्नान विधि से किया, स्नान की भी विधि होती है किस तरह, जैसे हम वर्णन कर रहे थे प्रणाम करना है कि ये भी एक विधि है। कलयुग में इतना नीचा स्तर हो चुका है कि खाने में या नहाने में बोलने में या चलने में कोई विधि नहीं है, इसलिए अर्जुन पहला प्रश्न गीता में यही पूछते हैं कि तुम प्रज्ञा से कहा पाता किम चले किम बने मतलब हमको ऐसा एक बड़ा ऊंचा भाव है उनका लेकिन बाह्य रूप में पूछ कर रहे तो शायद अर्जुन इसीलिए पूछ रहे कि जो भी सिद्धि प्रज्ञा हो चुकी है, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो चुकी है शास्त्र सार में भगवान ने आपने, तो वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे खाता है, प्रकार अंतर से सब आ गया उसमें चका आप बताइए। विधि मत स्नान कहला है और बड़ी बात सुनी लेकिन स्नान सबने तर्पण किया, आज नहीं कल के श्लोक में प्रभु जी निवेदन कर रहे थे भागवत जी में, अथ संपरेता नाम इच्छता, क्योंकि हमारे कुल परंपरा के जो पूर्वज है वो आशा रखते हैं कि ये हमें कुछ तर्पण कुछ जल स्नान जलपान देगा, तो किसी नदी आदि पर आप जाओ तिथि विशेष में तो ब्राह्मणों से क्या कराओ जलदान आदि कराना चाहिए, क्योंकि ये हमारी वैष्णव शास्त्रीय वैदिक विधि है जिसको आचरण करके सिखाना है, जिसको आचार्य ने सिखाया ये भी देखो स्नान आदि तर्पण तर्पण कर रहे हैं, प्रसंग है ना औरंगजेब का, औरंगजेब जो इतिहास में हो गया सबसे खराब राजा, जो मुगल जितने आए उसमें सबसे भयंकर कोई था तो यही था, बहुत मंदिर लूटा है लोगों ने परेशान मंदिर तोड़ा, औरंगजेब का नाम आप देखिए लेकिन ये मदन मोहन मंदिर तोड़ने में या फिर गोविंद उनका नाम आता है हिस्ट्री में इतिहास, और उसने अपने बाप को ही जेल में डाला था और उसे चक्की पिसवा रहा था और पानी का भी भूल नहीं देता था, बोले मेरे बाप को पानी नहीं देता, तब वो औरंगजेब का बाप बोला कि कलंक है तू, उससे तो हिंदू अच्छे से मरने के बाद भी अपने बाप को पानी दे रहे तो नहीं दे रहा काफिर है, काफिर बोलते हैं
जब आदमी
लेकिन आज के हम तो जीते जी नहीं बोलते
लेकिन बहुत बड़ा सुंदर बता रहे थे जीते जी बोला था लेकिन मंदिर के पास तोड़ना कम से कम बाद में तो बात खुश होगा
ये तो भूत बन के पड़े
क्योंकि उस समय उसको ज्यादा आशा है क्योंकि इस समय पीते हुए भी कहा तो नहीं गिरने पर खुद खड़ा होगा दूसरे से पी सकता है उस समय और कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए देना चाहिए श्राद्ध और फिर महाप्रभु ने देखा जानी का यही राम और राय देखो जो प्रेमी होता है ना उसके कुछ चिन्ह होते हैं जो शुद्ध होता है उसका अपना एक प्रभाव होता है एक चमक होती है तेज होता है उसकी आंखों में भी एक होता है ना फेस इज द इंडेक्शन दैट हृदय में क्या है उसकी शुद्धता क्या है उस व्यक्ति के बाह्य रूप से भी विद्वान लोग कुछ पकड़ लेते हैं पकड़ते हैं सीधी बात प्रभु तारे देखे लो जाने में यही राम आ रहा है लेकिन अब बाकी पैर बड़ी सुंदर ताहाते मिलते प्रभु चैतन्य महाप्रभु के मन में आया कि अब भी खड़ा हो और दौड़ो और उसको पकड़ लो देखो लेकिन धैर्य धारण करके खड़े नहीं हुए लेकिन उसके मन में रामानंद राय को मिलने की छूने की आलिंगन में अखबार में भरने की इच्छा हो गई देखिए बड़ी ऊंची बात है छल छाड़ के जो हरि को भजता छलिया उसकी चाह करता हिंदी में इसको मैं थोड़ा अनुवाद कर अगर आप छल कपट छोड़ के भजन करोगे ना तो ये जो छलिया है ना क्योंकि जितने भी छल करते इसका सरदार तो यही है छलम छलता गीता में वो कहते भी है कि जितने चीटर है सब मेरे चल रहे गुरु तो नहीं गुरु सब जगह नहीं गुरु कोई भी विषय हो अखिल कला गुरु मैं वैसे उसको छलिया कहते हैं साधारण प्रेम से छलिया कहते हैं गोपिया लेकिन छलिया भी उसको देखने की चाह करता है उसको मिलने की चाह करता है जो छल छोड़ के भजन करता है कुछ लोग ऐसे होते हैं भक्त इतने प्रेमी होते हैं इतने शुद्ध होते हैं कि हमें हृदय से लगता है कि उसको हम देखें उसको मिले उसके पास में इसको हम हिंदी में कहे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहां जाए वहां आनंद आने तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां से जाए वहां आनंद आने हम कैसे वो हमें देखना है हमें कैसा बनना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है एक मिलते ही दुख देता है एक बिछड़ प्राण हरि ले मानस में गोस्वामी संतों को दुष्टों को दोनों को प्रणाम करते हैं क्योंकि संत जब बिछड़ता है ना दुख होता है यही बात आएगी रामानंद राय को जब पूछा जाएगा दुख मध्य कौन दुख है गुरु पर कृष्ण भक्त संत बिना दुख नहीं और बोला जाएगा प्रेमी है ना इसलिए चैतन्य महाप्रभु की चाह है जो प्रेम से भजन करे भगवान दूर से देखना चाहते श्रीमद् भागवत द्रोण प्रसंग में मैत्री जी ने कहा 8-9-1 वृत्य दुदीक्षया मधुवनम गतो नदी भगवान हरि मधुवन में गए दर्शन देने के लिए नहीं वृत्य दास को देखने के लिए गए ऐसा नहीं कि अपने को दिखाने के लिए वृत्य दुदीक्षया ध्रुव को देखने के लिए भगवान गए क्योंकि भजन ऐसा किया और प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत के वाक्य को आपने सुना ही होगा वो कहते थे कि कुछ ऐसा भजन करो भगवान को देखने की इच्छा मत करो कुछ ऐसी शुद्ध भक्ति करो कि भगवान हमें देखने की इच्छा ऐसा ऐसा है ना कुछ तरीके से स्मरण करना है हमें हम आपने सुना होगा जो आप क्लास सुन रहे हैं आचार्यों के पद भागवत के श्लोक चैतन्य चरितामृत के बयान आपके सामने रखे जाए जिससे हमें प्रेरणा मिले साधना में शिक्षा मिले और हमारा लक्ष्य क्या है इसकी हम अग्रसर धीरे धीरे और उस समय क्या हुआ धैर्य धारण करके बैठे तो गए और रामानंद राय ने भी वहां से देखा कि दिव्य अपूर्व सन्यासी बैठा है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के शरीर से भी तेज निकल रहा था कैसा कविराज महानुभाव कहते हैं शत सूर्य समकांति अरुण रस
चैतन्य महाप्रभु को देखा तो चैतन्य महाप्रभु कैसे लग रहे थे?
शत सूर्य समकांति अरुण वसन सुवलित प्रकांड देह कमल लोचा।
सौ सूर्यों का तेज एक साथ प्रकट हुआ, हुआ इतना तेज निकल रहा है, मतलब महाप्रभु के शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि सौ सूर्य का तेज भी फीका लगे। रामानंद भाई सोच लीजिए कि सूर्य पृथ्वी पर आ गया क्या? जैसे भागवत जी में बलि महाराज के यज्ञ में जब वामन देव गए, महर्षिना तपस साक्षात मन्ने बपू धरल, बलि महाराज कह रहे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षात ऋषि मुनियों का तेज एक स्वरूप धारण करके आया हूं। वामन देव से इतना प्रकाश निकल रहा था और हमारे ब्रह्म महोत्सव में वामन जो ब्रह्म उत्सव मनाने जा रहे हैं राधा अष्टमी के बाद, तो ये अवसर भी उसमें आ रहा है। और इन भक्तों ने गुरुद्वारे के सेवकों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है, पालकी, आप भगवान को पालकी में उत्सव मूर्ति को बिठाकर अपने हाथों से, क्योंकि यहां पर पालकी में आपने सुना कि रामानंद राय आ गए, आप रथ यात्रा में किसको पालकी में बिठाते हो? रथ में जगन्नाथ जी को, बड़ी बड़ी पालकी, बड़ा रथ। ऐसे जगन्नाथ जिसकी रथ यात्रा निकलती है वे खुद अपने भक्तों का रथ चलाते हैं। अर्जुन रथ है प्रभु भैया रज्जु सिरन ब्राह्मण ने कहा महाप्रभु जी से, और ऐसे भगवान को अपने परिवार के साथ उठाना ये सौभाग्य दिया जा रहा है पालकी सेवा का। और भी बहुत उत्सव है, आप उसका लिस्ट बढ़ सकते हो, भक्तों से बेहतर जानकारी नीचे होगी, आप प्राप्त कर सकते हो। हम बार बार इसका जिक्र करते रहेंगे उत्सवों का जब अवसर अवकाश आता है, लेकिन हमें तन मन धन से सेवा करने के लिए तैयार होना है। और ऐसी सेवा भाव होगी, ये शुद्धता हमें इस लीला में प्रवेश करा देगी। समझ में हमारे हृदय से होगी ये लीला। अरुण वसन, एक तो तेज भी सूर्य जैसा, वस्त्र भी कैसा पहना था? लाल कलर का, सन्यासी है। और सुवलित प्रकांड, 32 महापुरुषों के लक्षण से युक्त थे। महाप्रभु की भुजाएं घुटने तक लंबी थी, 7 फुट से भी ऊंचा शरीर, और आंखें जैसी सुवलित प्रकांड कमल जैसी, मतलब कमल की पंखुड़ियां जैसे, यहां कान तक जैसे तीर, धनुष को आप तीर चलाने के लिए बैंड करो तो ऐसे ही भगवान चैतन्य के नेत्र कान तक लंबे थे, और कमल जैसे सुंदर हुए, कमल की पंखुड़ी जैसे, जैसे कमल की आपने देखा होगा लाल या गुलाबी कमल को, तो उसके बीच में थोड़ा वाइटनेस होता है, स्लाइट वाइट, और उसके बॉर्डर में लालिमा पिंकिस होता है। चैतन्य महाप्रभु की आंखों में भी बॉर्डर में लालिमा, कमल कमल के गुणों सब, जैसे कमल लोचन मतलब केवल आकार नहीं, कमल नहीं, जिसकी दृष्टि में भी प्रेम था, करुणा था, और ऐसे कमल लोचन श्री चैतन्य महाप्रभु जी को जब रामानंद राय ने देखा दौड़े, महाप्रभु तो बैठे रहे धैर्य धारण करके, लेकिन रामानंद राय आए आगे और आकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में दंडवत किया, और जैसे ही दंडवत किया चैतन्य महाप्रभु खड़े हो गए और रामानंद राय को खड़ा कर अपनी भुजाओं में भर लिया। कविराज महानुभाव कहते हैं, कविता रे कैला प्रभु आलिंगन दृढ़ कर दिया, प्रेमा विषय प्रभु नृत्य चेता, और स्वयं को भूल गए, और उधर रामानंद राय भी आलिंगन। देखो दो भक्त, यहाँ तो भगवान और भक्त का मिलन है, लेकिन जब दो भक्त भी मिलते हैं, यहाँ तो असलियत में राधा रानी और विशाखा जी मिल रही है, तब तो से बात करें तो राधा भाव है गौरांग और ये विशाखा जी है, लेकिन बाह्य रूप से दोनों भक्त, भक्त रूप में प्रभु गौरांग है और ये भी भक्त है। और भक्त से भक्त का जब मिलन होता है तो कैसा होता है, ये प्रेरणा मिलती है। जैसे भागवत जी में 3रे स्कंद में पहले अध्याय के 18वें श्लोक में मैत्री सुखदेव जी कहते हैं कि यमुना उपेत्य, यमुना के तट पर विदुर की तीर्थ यात्रा करते हुए गए, महाभागवत उद्धव दर्श, उद्धव को देखा, उद्धव जी सिर्फ बैठे थे और प्रेम भाव में रो रहे, और विदुर जी जब गए
तो कहते वासुदेवानंतरम पर वासुदेव के अनुचर को जैसे ही देखा आलिंग गाट प्रणयेन प्रणय बड़े प्रेम से विदुर जी ने उद्धव जी को
विदाम
और दोनों के नेत्रों से अश्रु बहने लगा। जैसे यहां कविराज जी कहते हैं श्रेयक स्तंभ अश्रु कंप वैवर्ण प्रेम अश्रु रोमांच होने लगा रामानंद राय को भी और चैतन्य महाप्रभु को। ये वर्णन इसलिए सुनना जरूरी है भक्तों कि हम भी रोज भक्तों से मिलते हैं लेकिन जैसे शेर हिरनी को शिकार देखो कैसे मिलना ये प्रेम का प्रसंग सुनेंगे तब पता चलेगा ना भक्तों से। हमारे नीतिकारों ने बड़ा सुंदर बात लिखा है कि भक्त से भक्त कैसे मिलता है चार मिले 64 किलो चार मतलब दो हाथ उसके और दो इसके दोनों हाथ जब मिलते हैं तो वो भी अपना वोट बड़ा करता है मुंह की तो 32 अंदर दिखते हैं और उनके भी 32 चार मिले 64 किलो दोनों के हाथ मिलेंगे तो 64 दांत हो गए ना जो कि आज गिनती करोगे तो 32 नहीं होंगे एक तो कम ही समझ लो लेकिन 32 दांत होते हैं ऐसे तो चार मिले 64 किलो और 20 रहे कर जोड़ इसकी 10 उंगलियां और उसकी 10 उंगलियां तो दोनों उंगली मिलाए फिर एक दूसरे के सामने हास्य किए तो दोनों के दांत दिख गए और दोनों फिर क्या कहते हैं हरिजन से हरि भक्त मिले भीड़ से 7 करोड़ तो जब वो अखबार में भर लिया तो एक भक्ति है भक्त के शरीर का स्पर्श करना भी दात्रक संदर्भ में अंबरीश के विषय में है ना कि क्योंकि भक्त का चरित्र साधना करके इतना शुद्ध हो चुका है कि उनके शरीर में प्राकृतिक तत्व नहीं रहता उसके शरीर की हड्डी में इतनी शक्ति आ जाती है कि क्या करे बड़े बड़े देवता और स्वर्ग का उद्धार उसकी हड्डी करती है दधी जी की मृत्रा से प्रसंग की बात याद करी तो फिर वो तो प्राण शरीर त्यागा हुआ की बात है जब वो उसमें है ऐसे भक्त का स्पर्श का क्या कहना विम से 7 करोड़ मतलब ऐसा वर्णन है कि 3.5 करोड़ रोग इसके शरीर में है और 3.5 आप लोग गिनिएगा मत नहीं तो फिर आपको आपकी गिनती कहीं और हो जाएगी क्योंकि असंभव है लेकिन हमारा साहित्य इस बात को कहता है झूठा नहीं है और एक दो कहीं कम हो गए होंगे तो कम भी हो सकते हैं वो तो बढ़ते रहते तो गिरते रहते रोमस ऋषि को याद कर लीजिए ये बड़ी सिंपैथिक कथा है यही ना रोमस जो एक बार एक कल्प पर गिरता था ब्रह्मा के एक दिन में और एकता का कितना जीव है रोमस जी का सबसे आयु बड़ा बात आता है लेकिन यहाँ सुनने लायक बात है कि भक्त से भक्त मिलता है तो एक दूसरे के प्रति भाव प्रेम से भरा होता है क्योंकि भक्तों के शरीर का स्पर्श करने से भी पाप कट जाते हैं और पवित्रता हमारे जो ये दुर्भाग्य की रेखा है ना वो सौभाग्य में बदल जाती है जब वैष्णव गुरु के चरण में अंक भाग के नेटक टू अंक यहाँ पर खराब लिखा हुआ है सर जैसे आप लोग रजिस्ट्री कराते होंगे तो उसमें जो सिक्का होता है ना उसमें उल्टा लिखा है लेकिन मारो तो कैसा पड़ता है सीधा ऐसे यहाँ से उल्टा है लेकिन गिरधारी के चरणों में प्रभुपाद के चरणों में भक्तों के चरणों में झुकाओ उल्टा सीधा भक्तों के चरणों में झुकने से सीधा हो जाएगा सर मतलब दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और भक्तों की हड्डी की जहां बात है उसको स्पर्श करने से जो शक्ति प्राप्त होता है इसकी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। भक्तों आपने नाम सुना होगा महाराष्ट्र के भक्त हुए विठल के परम प्रेमी उसका नाम था चोखा मेला नाम सुना चोखा मेला अरे चोखा मेला बहुत उच्च स्तर के भक्त थे जब नामदेव और ज्ञानेश्वर जैसे भक्त उनके आने से पहले सत्संग चालू नहीं करते थे जैसे जनक के आने से पहले याज्ञवल्क नहीं करते थे ऐसे इतने उच्च कोटि के लेकिन उसका जन्म तो उच्च परिवार में हुआ था लेकिन उसका पालन शुद्रपुर में हुआ था। एक महाराष्ट्र विजयगढ़ की बुक है आप चोखा मेला का जन्म प्रकरण सुनोगे ना बाप रे जनपी चोखा मेला नाम क्यों पड़ा एक ब्राह्मण दंपति पति पत्नी
आइए चैतन्य चरितामृत से गोदावरी के तट से फिर हम लोग चंद्र भागा के तट पर चले जाते हैं। यदि पंडरपुर कहाँ पर है? विठल जहाँ विराजते हो नदी कौन सा है? मैं भूल तो नहीं कर रहा हूँ ना, चंद्रभागा नदी है। यहाँ ईश्वर का बहुत सुंदर मंदिर भी है। अब चंद्रभागा में स्नान करके विठल के दर्शन करने ये दोनों दंपति गए, और दोनों दंपति जब वहां गए तो विठल के चरणों में प्रार्थना की। प्रभु जी ने तो प्रार्थना की कि हमारी भक्ति करें, लेकिन माता जी जो उसकी पत्नी थी उसने प्रार्थना की मेरी योग सुनी है, बस आप जैसा कोई पुत्र हो जाए या आपका कोई भक्त पुत्र हो जाए जो हमारे कुल का उद्धार करे। शारीरिक अवस्था ऐसी थी कि इन दोनों का पुत्र हो ही नहीं रहा था बरसों से, और ऐसी प्रार्थना आशा अभिलाषा करके अपने गांव जा रहे थे तो साक्षात विठल एक ब्राह्मण का रूप लेकर आए जिस रास्ते से वो जा रहे, और प्रभु जी थक गए। प्रभु जैसे थक जाए पेड़ के नीचे, और स्त्री जो है वो धीरे धीरे चल गई। उसने कहा कि मैं चलती हूँ, आप बाकी मुझे हो जाइए। भगवान विठल एक ब्राह्मण का रूप लेकर आए उस ब्राह्मण के सामने, और हुआ क्या था, उस पंडरपुर मंदिर से कुछ आम, आम जानते हो, आम मैंगो जिसकी बात हम कल भी कर रहे थे, आम का उदाहरण दे रहे थे ना, आम कुछ मिला था उसको। उसने कहा मैया कुछ प्रसाद मिलेगा, तो ब्राह्मण के रूप में भगवान मांग रहे कुछ प्रसाद मिलेगा। उसने कहा प्रसाद तो है लेकिन हमारे लिए है, अब साधु सेवा का अवसर था, लेकिन वो दर्शन करके आए कि शुद्ध थी संस्कार थे। उन्होंने कहा ठीक है, एक तो आम है हमारे लिए, यात्रा में भोजन था, लेकिन आप साधु मिले हो तो ठाकुर जी को तो सबसे प्रिय साधु है, उनकी सेवा वैष्णव सेवा ही तो विष्णु सेवा है, आप लीजिए। उसने कहा ये आम हम तभी खा सकते हैं जब इसके गुटला छिलका जो है वो नीचे नहीं गिरने चाहिए। तो नीचे नहीं गिरे तो कहाँ गिरा है? आप अपनी बुद्धि से कहीं आकाश में उड़ा दो। बोले नहीं, वो आपको रखना है, आपको वापस दिया जाएगा, नीचे नहीं रखना है। अभी सोची साथ में कुछ नहीं, नीचे नहीं रख, कहाँ रखो? बोले महाराज ये कौन सी आपकी नई कोई चाल है, मतलब नया मांग है? अरे आम खा लो, गुटला छिलके फेंक दो, नहीं तो मेरी गुटली को सुखा दे, बोल दो बना दो। हमें क्या मतलब है? बोले ये प्रसाद तो हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारा जो जूठन है वो फेंका जाए, वो हमें पसंद नहीं। अब क्या करें? बोले ठीक है, प्रभु भी तो वहां सो रहे हैं, लेकिन आप काम फेंकेंगे नहीं, आप हमारे इस गुड़ नहीं लेंगे। और गुटला छिलकी खा के उसकी गोद में विफल डाल गए, और चोखा उसको स्वच्छ करके मेला, और जैसे ही गुटला छिलकी लिया क्योंकि फेंक दे तो मना किया था, और जैसे ही भगवान अंदर ज्ञान हो गए उसने कहा प्रभु जी जब आए जाकर बोले देखो एक अजब घटना घट गई, ये साधु आया बोले दुर्गा छिलकी फेंकना नहीं, हमने फेंका नहीं इसलिए गोद में रखा। जैसे ही गोद खोला वहां गोडला दुर्गा छिलकी नहीं था, वहां एक सुंदर चमकता हुआ राजकुमार जैसा था। ऐसे भक्त हुए जिस स्थान में हम रह रहे हैं, ये महाराष्ट्र में, जिसके नाम से विठल का कीर्तन निकलता था, रोमांच कंपा अश्रु हो जाता था, बड़े बड़े जो विदेशी विमुख लोग है ना वो प्रेमी बन जाते, और फिर उसका माता पिता तो फिर मर गए। बड़ी लंबी उसकी चरित्र हमको सुनाना नहीं, लेकिन जो भक्तों के मिलने से उनको सुनने से क्या लाभ होता है ये हमें आपके भक्त सामने रखना, और ये लंबी घटना नहीं है, 400-500 वर्ष पूर्व की कथा है। भागवत का प्रसंग बड़े बहुत साल हो गया, लेकिन ये तो, और वर्णन आता है कि वो एक बिल्डिंग बन रहा था वहां पैलेस राजाओं के द्वारा, उसमें ये नौकरी करते थे, शूद्र थे ना, कौन चौका मेला, और कई लोग वर्कर काम करते थे, उसमें ही ये बिल्डिंग धंस गया गिरा, और उसमें चौका मेला मर गया, और सारा मालदा पड़ा था उसमें, उसके नीचे कोई लाश भी नहीं मिल रहा था। उस समय कोई जिसी भी कुछ था भी नहीं कि कैसे निकाले, लेकिन मेहनत करके सब बचे कुचे लोग निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ रामदेव जी सत्संग चालू नहीं कर रहे। जिस दिन वो मर गए उसको तो पता नहीं, बोले चोखा मेला नहीं आया, चोखा मेला नहीं आएगा तब तक कथा चालू होगी नहीं। थोड़ा दिन गुजर गया बिना सत्संग के, दिन गया सब भक्त लोग दुखी, बोले आज कथा नहीं हुआ।
कुछ भगत खुश थे कि चलो सीधा प्रसाद हुआ। सावित्री भी बताए
दो दिन के लिए हुआ, रामदेव जी ने कहा चोखा मिला नहीं आ रहा है, और चोखा मिला कथा में नहीं आ रहा है मतलब गड़बड़ है, क्योंकि वो कथा हो और वो कहा हो
ऐसा भी हो,
क्योंकि प्रेमी जो है वो प्रेमी की अपने प्रियतम की अपने प्रभु की कथा के बिना
रह भी तो नहीं सकता,
और वो नहीं आ रहा था कुछ गड़बड़े खुद ढूंढने निकले तो पता चला
कि अरे एक बिल्डिंग गिरी, रामदेव को तो उसे दुनियादारी से पता नहीं था,
तब पता चला कि उसमें कई वर्कर मर गए, तब इसको याद आया कि एक भी तो नौकरी करता था
वर्कर
निश्चित उसमें मर गया,
और अब इसको ढूंढना है,
अब ढूंढने जाएंगे तो कई दिन बीत गए तो अभी शरीर तो मिलेगा नहीं, किसी का हाथ मिल रहा है, किसी का पैर मिल रहा है, और किसकी तो हड्डियां मिल रही है केवल, दुर्गंध आ रही है।
जब महाराज आप अपना भजन करो, कुछ पंडरपुर वासी महाराष्ट्र भक्तों ने कहा नामदेव महाराज आप अपना भजन सेवा कीर्तन करो, यहाँ कुछ मिलने वाला, क्योंकि मिल भी जाए तो कौन चोखा मिला की हड्डी, और यहाँ खड़ा नहीं रहा जाता, इतनी दुर्गंध आ रहा है, पर आप साधु हो सच सब सलाह दे रहे थे, क्योंकि बिजनेसमैन का एक बहुत बड़ा उपकार होता है कि वो साधु को सलाह देते रहते हैं, इनकी बड़ी सेवा है, इसलिए वो लोग जन्म लिया है, करते अपना काम मानते नहीं है साधु की सलाह, वो क्या कहते साधु को सलाह देखो प्रभु जी आप ऐसे क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, वो तो हमारी पत्नी कहेगी ये काम होता है ना साधु का। नामदेव जी ने कहा नहीं हम चौका देना को देखे बिना सत्संग चालू नहीं कर सकते, ये हमारा कहते तुम्हारा कैसे दिखोगे, तब उसने कहा सीधी बात है चोखा मेला की हड्डी को प्लांट पे लगाओ, उस हड्डी से और चोखा मेला की हड्डी में दुर्गंध नहीं सुगंध है, और देखो नाम देने के लिए, और उसने भी एक हड्डी मिली जो हिल गई, नाम देने उठा के कान पे रखा माजा ही ख्याल है वांगो रंगा वो प्रसाद खा रहा है चिंतन कर रहा है, और ऐसे भक्तों का हड्डी छूना चरण छूना शरीर छूने की बात छोड़ दो, दैनिक के नाय से हमारे आचार्य ने गा दिया दर्शन आपके तो दर्शन से पाप जम जाते हैं, तो रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का ये पवित्र मिलन है ना, ये मिलन हमें रामायण में राम और भरत का मिलन का ज्ञान करा, इसकी चर्चा हम कल से चालू करेंगे, समय को सीमा रेखा में रखते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा मात्र।